संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 5 नवंबर 2021 के बुलेटिन की हेडलाइंस। ग्लासगो में चल रहे जलवायु सम्मेलन COP26 में तापमान वृद्धि और जलवायु वित्त जैसे प्रमुख मुद्दों पर जोरदार चर्चा। कोरोना वायरस महामारी के मामलों में एक बार फिर उछाल। इस बीच भारत में निर्मित कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिली मंजूरी। इथियोपिया के टीगरे क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार हनन के मामलों पर चिंता, लड़ाई तुरंत रोके जाने की पुकार। और पत्रकारों के लिए बढ़ते जोखिमों के मद्देनजर उनके खिलाफ अपराधों के दोषियों को न्यायिक कार्रवाई के दायरे में लाए जाने की पुकार। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहा है, जो रविवार 31 अक्टूबर को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य जोर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने की दिशा में हो रही प्रगति पर है, जैसा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन में मुख्य प्रावधान है। इसके लिए अन्य उपायों के अलावा कोयला, तेल व गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी और जलवायु वित्त का प्रबंध करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से छाए हुए हैं। COP26 के बारे में विभिन्न खबरों का सार सुनिए सचिन गौड़ से।
गुरुवार को ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य जोर कोयले पर निर्भरता घटाने के उपायों पर था। कोयले से चलने वाले ऊर्जा संयंत्र कार्बन उत्सर्जन का एक मुख्य स्रोत हैं। COP26 सम्मेलन के प्रमुख आलोक शर्मा:
Today, I think we can say that the end of coal is in sight. Today, we are publishing the Global Coal to Clean Power Transition Statement, a commitment to end coal investment.
कॉप सम्मेलन के अध्यक्ष आलोक शर्मा कह रहे थे कि आज शायद ये कहा जा सकता है कि कोयले का अंत दिखाई दे रहा है। कोयले से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक वक्तव्य को प्रकाशित किया गया है, जिसमें विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वर्ष 2030 तक कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध ढंग से बंद करने और अन्य देशों में वर्ष 2040 तक ये लक्ष्य हासिल करने के प्रति संकल्प व्यक्त किया गया है। इस संकल्प पत्र पर 77 पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें 46 देश हैं। 23 देश कोयला प्रयोग बंद करने के लिए पहली बार संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। COP26 में बुधवार का दिन वित्तीय घोषणाओं के नाम रहा। सबसे बड़ी घोषणा थी दुनिया भर की लगभग 500 वित्तीय संस्थाओं और संगठनों द्वारा $130 ट्रिलियन की धनराशि जुटाने पर सहमति। कंपनियों को विज्ञान आधारित दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए वर्ष 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचना होगा। हालांकि जलवायु कार्रवाई के लिए विकासशील देशों को प्रतिवर्ष $100 अरब की धनराशि मुहैया कराने का वादा इस साल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। सम्मेलन के दौरान 100 से ज्यादा देशों ने वनों की कटाई रोकने और भूमि के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया गया है कि चीन, रूस और ब्राजील ने भी इस वादे को पूरा करने की बात कही है। सम्मेलन के दौरान भारत ने भी वर्ष 2070 तक नेट शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि COVID-19 महामारी के मामले एक बार फिर उभार पर हैं, और वैसे तो ये वृद्धि सभी क्षेत्रों के देशों में देखी गई है, मगर यूरोप व मध्य एशिया में ज्यादा वृद्धि हो रही है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गैब्रियसस ने गुरुवार को जिनेवा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा,
22 months since the first case of COVID-19 were reported and almost a year since the first vaccines were approved, reported cases and deaths from COVID-19 are increasing again.
डॉक्टर टेड्रोस कह रहे थे कि महामारी शुरू होने के लगभग 22 महीने बाद और पहली वैक्सीन को मंजूरी मिलने के लगभग एक साल बाद ये महामारी फिर अपना सिर उठा रही है। दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हर दिन हम 50,000 से भी ज्यादा अपने बहनों और भाइयों की जिंदगियां खत्म होते हुए देख रहे हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान सभी क्षेत्रों के 56 देशों में COVID-19 महामारी के कारण होने वाली मौतों में 10% की बढ़ोतरी होने की खबरें मिली हैं। डॉक्टर टेड्रोस के शब्द, उन्होंने स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होते रहना चाहिए। कोविड-19 का संक्रमण रोकने और लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हमारे पास सभी उपकरण व संसाधन मौजूद हैं और हम देशों से ये आग्रह करना जारी रखेंगे कि वो ऐसे उपकरणों व संसाधनों का प्रयोग करना जारी रखें। इस बीच WHO ने बुधवार को कोविड-19 की एक अन्य वैक्सीन कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को स्वीकृति दी है जो भारत में निर्मित है। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन UN स्वास्थ्य एजेंसी से मंजूरी पाने वाली 8वीं वैक्सीन है। इस मंजूरी के बाद कोवैक्सीन जल्द ही दुनिया भर में करोड़ों लोगों के प्रयोग के लिए उपलब्ध हो सकेगी। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट ने कहा है कि इथियोपिया के टीगरे क्षेत्र में लड़ाई में शामिल सभी पक्षों को ये लड़ाई तुरंत रोकनी होगी, नहीं तो क्षेत्र में पहले से ही त्रासदीपूर्ण मानवीय स्थिति बिल्कुल बिखराव और विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
ध्यान रहे कि इथियोपिया में इन खबरों के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है कि टीगरे के क्षेत्रीय बल पड़ोसी क्षेत्र अम्हारा में भी दाखिल हो गए हैं। ऐसी खबरें भी आई हैं कि इथियोपिया के सरकारी बलों ने टिग्रे की राजधानी मैकेले में गोलाबारी की है। UN मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशेलेट की यह अपील इन्हीं हालात के मद्देनजर की गई है। मिशेल बाशेलेट ने जिनीवा में पत्रकारों से कहा कि टिग्रे में आम लोगों को दर्दनाक बर्ताव और क्रूर हिंसा का निशाना बनाया गया है। मिशेल बाशेलेट ने कहा,
We have reasonable grounds to believe that during this period, all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
ये मानने के लिए हमारे पास समुचित आधार है कि इस अवधि के दौरान टीग्रे संघर्ष में शामिल सभी पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, मानवीय सहायता और शरणार्थी कानून का उल्लंघन किया है। इनमें से कुछ हनंतु युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में भी आ सकते हैं। UN मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशेलेट के शब्द, उन्होंने सभी पक्षों से आम लोगों की हिफाजत सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दिए जाने की अपील की है।
संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कहा है कि विश्व खाद्य कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है और अब ये जुलाई 2011 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विभिन्न खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर नजर रखने वाला FAO फूड प्राइस इंडेक्स सितंबर से लगातार तीसरे महीने बढ़कर 3.9% पर पहुंच गया है। कनाडा, रूस और अमेरिका सहित प्रमुख निर्यातक देशों में कम फसल होने के कारण अनाज की कीमतों में कुल मिलाकर 3.2% की वृद्धि हुई, जिसमें गेहूं में 5% की वृद्धि देखी गई। साथ ही अन्य प्रमुख अन्न की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई। ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के मौके पर गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इन सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण और खपत में दुनिया की कुल ऊर्जा का लगभग 1/3 हिस्सा इस्तेमाल होता है। दुनिया की आबादी को भोजन मुहैया कराना भी लगभग 1/3 वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जिससे ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में प्राथमिकता बन जाता है।
संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के अनुसार केवल वर्ष 2020 के दौरान ही 62 पत्रकारों की हत्या उनके कामकाज के कारण कर दी गई थी। संगठन के अनुसार वर्ष 2006 और 2000 के बीच 1200 से भी ज़्यादा मीडिया कर्मियों को अपना कामकाज करने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मीडिया कर्मियों की हत्याओं के 10 में से 9 मामलों में हत्यारे किसी कानूनी कार्रवाई और दंड का सामना नहीं करते हैं। इस तरह के गंभीर आंकड़ों को देखते हुए इस बार 2 नवंबर को मनाए गए पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर अभियोजक सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। इन प्रयासों के तहत न केवल मीडिया कर्मियों के हत्यारों को न्याय के कटघरे तक पहुंचाने में, बल्कि हिंसा की धमकियों व खतरों के लिए भी कानूनी कार्रवाई किए जाने में अभियोजन सेवाओं की महत्ता उजागर की गई है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि बहुत से देशों में भ्रष्टाचार, तस्करी, मानवाधिकार हनन या पर्यावरणीय मुद्दों की खोजी पत्रकारिता करने के लिए ही पत्रकारों की जिंदगियां जोखिम में पड़ जाती हैं। तो साप्ताहिक समाचार बुलेटिन के इस अंक में इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।